दिन भर तारीख 25 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सीरिया में नए साल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे रूसी सेना के बैंडवाद को समेत सभी 92 लोगों की हवाई दुर्घटना में मौत, रूसी सेना का विमान काला सागर में गिरा।
Сегодня при выполнении планового перелета 5 часов 25 минут с аэродрома Адер.
बीबीसी के वर्षांत कार्यक्रम में आज गुजरे जमाने की बेहद मशहूर अदाकारा, डांसर, डांस डायरेक्टर, थिएटर पर्सनालिटी जोहरा सहगल।
प्रिस्टी थिएटर्स में थी, फिल्मों में भी काम किया है, एक्टिंग नहीं बल्कि डांस डायरेक्शन भी दिया, बाजी, सीआईडी, 9211, नीचा नगर,
नाम सुने
इनके नाम।
लेकिन थोड़ा सा ठहर कर पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार रहे सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान ने सोची से उड़ान भरी थी और ये सीरिया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। रशियन टेलीविजन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विमान के बीच बातचीत प्रसारित की गई, इसे विमान से हुई आखिरी बातचीत माना जा रहा है। रूस की सरकार ने सोमवार को एक दिन के शोक का ऐलान किया है। फिलीपींस एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में है। इस तूफान को नीना नाम दिया गया है। तूफान के असर से 235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये आशंका है कि तूफान राजधानी मनीला समेत देश की सबसे घनी आबादी वाले हिस्से को भी चपेट में ले सकता है। तूफान प्रभावित क्षेत्रों के हजारों लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। बड़ी संख्या में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने आए लोग भी फंस गए हैं। पोप फ्रांसिस ने इसराइल और फलस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। पोप ने वेटिकन में अपने क्रिसमस संबोधन के दौरान दोनों पक्षों से इतिहास का नया अध्याय लिखने का रास्ता तलाशने को कहा। उन्होंने कहा कि इसराइल और फलस्तीन को नफरत और बदले की भावना को पीछे छोड़ देना चाहिए। पोप ने कहा,
alle donne e agli uomini dell'amata terra santa,
पवित्र भूमि की महिलाओं और पुरुषों के लिए शांति होनी चाहिए, वो भूमि जिसे परमात्मा ने चुना। दुआ है कि इसराइल और फलस्तीन के लोगों को इतिहास का नया अध्याय लिखने का साहस मिले, एक ऐसा अध्याय जहां नफरत के और बदले की भावना आपसी समझदारी और समन्वय के साथ भविष्य निर्माण करने को जगह दें। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने देश के विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों के राजदूतों को बुलाएं और सख्त शब्दों में उनके सामने अपना पक्ष रखें। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से नाराज हैं जिसमें पश्चिमी तट के कब्जे वाले क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों पर रोक की बात की गई है। जिन राजदूतों को बुलाने का आदेश दिया गया है उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के राजदूत शामिल हैं। अमेरिका ने प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि उन्हें भी आम लोगों के कष्ट पर पीड़ा होती है। मोदी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को छूट की बात सिर्फ अफवाह है। मोदी ने कहा,
मैं चाहता था कि सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक दलों के लिए भी, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी व्यापक चर्चा हो। अगर सदन चला होता तो जरूर अच्छी चर्चा होती। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो।
ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया की पुलिस का कहना है कि वेस्ट जावा प्रांत में हुई कार्रवाई में दो संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों की मौत हो गई है। ये कार्रवाई क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हमलों को रोकने के लिए जारी प्रयासों के तहत की गई है। जर्मनी के दक्षिणी शहर ऑसबॉर्ग में क्रिसमस के दिन हजारों लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। इसकी वजह यह थी कि वहां द्वितीय विश्व युद्ध के एक बम को निष्क्रिय किया जाना था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए रूस के सैन्य विमान में सवार सभी 92 यात्री मारे गए हैं। यह विमान सीरिया जा रहा था। रूसी सेना का यह विमान TU-154 सोची के एडलर हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद काला सागर में गिर गया। विमान सीरिया के लटाकिया प्रांत के लिए उड़ान पर था। विमान ने मास्को से उड़ान भरी और ईंधन के लिए सोची में रुका था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगोर कोश्निकोव ने इस दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा,
Сегодня при выполнении планового перелета в 5 часов 25 минут с аэродрома Адлер после взлета
TU-154 विमान ने स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 5:25 पर सोची के एडलर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 5:27 पर रडार से ये विमान लापता हो गया। विमान में चालक दल के 8 सदस्य और 84 यात्री थे। यात्रियों में रूसी सेना के प्रसिद्ध आधिकारिक बैंड अलेक्जेंड्रोव एनसेम्बल के 64 सदस्य शामिल थे। साथ ही विमान में 9 पत्रकार भी थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द, रूस के सैन्य जहाज, हेलीकॉप्टर व ड्रोन अब भी विमान के बाकी हिस्सों को तलाशने में लगे हैं। साथ ही शवों को भी ढूंढा जा रहा है। खोजी दल को एक शव भी मिला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगोर कोश्निकोव ने आगे कहा,
В настоящее время в полутора километрах от Черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены...
दुर्घटनाग्रस्त विमान TU-154 के मलबे का कुछ हिस्सा सोची तट से 1.5 किलोमीटर दूर काला सागर में 70 मीटर की गहराई में मिला है। 4 जहाज, 5 हेलीकॉप्टर विमान के बाकी हिस्से को तलाशने में जुटे हैं। दुर्घटना की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख रूस के उपरक्षा मंत्री जनरल पावेल सोची के लिए रवाना हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगोर कोश्निकोव के शब्द। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के पायलट और संचालकों के बीच हुई आखिरी बातचीत सामने आई है, जिसमें हवाई यातायात नियंत्रक मौसम के बारे में बता रही है। पायलट विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है और इस बातचीत में किसी भी तरह की अफरा तफरी के संकेत नहीं है। इन आवाजों से यह साफ हो जाता है कि रडार से गायब होने से पहले तक विमान में किसी भी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के नाम शोक संदेश भेजा है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे, विमान में सवार मृतकों के परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं। सरकार ने आयोग गठित कर घटना की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। मृतकों के परिवार वालों के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। कल उनकी याद में पूरे रूस में शोक दिवस है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जो लोग विमान में सवार थे उनमें अधिकांश सेना के मशहूर बैंड अलेक्जेंड्रोव एनसेम्बल के सदस्य थे। इन कलाकारों को सीरिया के लटाकिया शहर के पास रूसी सेना के आधार शिविर में आयोजित नए साल के समारोह में प्रस्तुति देनी थी। अलेक्जेंड्रोव एनसेम्बल बैंड की उस प्रस्तुति के अंश को सुनिए जो उन्होंने रूस के छादन के गांव वालों के लिए दी थी। तो जैसा कि आपने सुना, रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए रूस के सैन्य विमान में सवार सभी 92 यात्री मारे गए हैं। ये विमान सीरिया जा रहा था।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
नॉर्वे में रह रहे भारतीय मूल के एक दंपत्ति पर उनके 5.5 साल के बेटे के साथ हिंसक बर्ताव करने की शिकायत हुई, जिसके बाद उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया। नॉर्वे की चाइल्ड केयर सर्विसेज ने अब बच्चे को एक संस्था की देखरेख में दे दिया है। माँ बाप ने इस कदम के खिलाफ अपील की है और भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से मदद की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
ये तो कंफर्म बात है, हमने तो कभी अपने बेटे को, हमारा एक ही बेटा जी, हमने कभी उसको नहीं मारा, क्योंकि उसकी हर डिमांड हम पूरी करते हैं, जो कहता है वो लेते हैं, क्योंकि हम प्यार ही इतना करते हैं उसको।
नॉर्वे से फोन पर बात करते हुए अनिल कुमार शर्मा ने बार बार ये कहा कि ना उन्होंने ना उनकी पत्नी गुरविंदर जीत ने बेटे आर्यन के साथ कभी मारपीट की है। 13 दिसंबर को अचानक नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उनके बेटे को स्कूल से ले लिया और फिर उनकी पत्नी से भी पूछताछ की। 50 साल के अनिल कुमार की ये दूसरी शादी है और उनके मुताबिक बहुत मुश्किल से उन्हें बेटा पैदा हुआ जिसे वो बहुत प्यार करते हैं।
यहाँ तो बच्चे सभी के यही बात कहते हैं, मम्मा पापा मारते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है वो हमारा बच्चा उठा कर ले जाए। इंडियन नॉर्वेजियन सभी के बच्चे जी एक ही बात है, किसी भी नेशनलिटी का बच्चा हो मतलब सभी बच्चे ये कहते हैं, ये तो एक नॉर्मल बात है।
भारत से अलग नॉर्वे में बच्चों के पालन पोषण से जुड़ा कानून सख्त है और वहाँ रह रहे हर बच्चे और बड़े पर लागू होता है, चाहे उसका धर्म और नागरिकता कोई भी हो। इसके तहत हर नगरपालिका में बाल कल्याण सेवा यानी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज बनाई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की मानसिक या शारीरिक सेहत के लिए चिंतित है, उसे लगता है कि बच्चे को मदद चाहिए, तो वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को संदेश भेज सकते हैं, जिसके बाद उसकी पड़ताल करने के लिए सर्विसेज बाध्यकारी हैं। अब अनिल और उनकी पत्नी ने अपने वकील टीना थुर के जरिए अपील दायर की है।
छह महीने पहले भी इस दंपति के खिलाफ शिकायत आई थी और ये छह महीने से निगरानी में थे। दूसरी शिकायत आने के बाद ही बच्चे को ले जाया गया। अब हमने अपनी अपील में कहा है कि बच्चे को लौटाया जाए, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ हिंसा का आरोप गलत है।
आर्यन के मामले से पहले भी साल 2012 में भारतीय मूल के दंपति अनुरूप और सागरिका भट्टाचार्य के खिलाफ शिकायत के बाद उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया था। आखिर में बच्चों को ताया की देखरेख में रखे जाने पर फैसला हुआ और बाद में उनकी मां ने उनकी कस्टडी ले ली। इस बीच सागरिका और अनुरूप का तलाक हो गया। सागरिका और बच्चे भारत में हैं और अनुरूप नॉर्वे में। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा,
इन द वेस्ट और एनीवेयर इन इंडिया और व्हेयरएवर देयर इज बाउंड टू बी टू साइड्स ऑफ दैट सिस्टम।
हर देश के अलग कायदे होते हैं और उनके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। नॉर्वे समेत सभी स्कैंडिनेवियाई देशों में बच्चों के शोषण के प्रति बहुत कड़ा रुख है। इससे बहुत से बच्चों की जान बची है और जिंदगी संवर गई है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के तौर तरीकों को अपनी जीवन शैली में नहीं ढाल पाए हैं।
नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने दावा किया कि ज्यादातर मामलों में वो बातचीत, आर्थिक मदद और काउंसलिंग के जरिए माँ बाप और बच्चों को साथ रखने की ही कोशिश करते हैं। बच्चे को माँ बाप के घर से हटाकर परिवार, दोस्तों या किसी और वयस्क की देखरेख में या बच्चों की संस्था में रखा जाना आखिरी विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। दिव्या आर्य, बीबीसी, दिल्ली।
साल 2016 खत्म होने को है और अब नए साल का इंतजार है। साल के आखिर में बीबीसी आपके लिए लेकर आई है कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात जिन्होंने गुजरे जमाने में एक अलग मुकाम हासिल किया था।
सवाल एक है कि इतने अवार्ड मिलने से क्या मैं कोई बेटर म्यूजिशियन हो गया?
खानदान हम लोग का रोहिला, वो जो है ना, वो रोहिला किस कदर जालिम जफाजी कीना परवर था, यानी वो लोग हैं हम।
हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, उसमें जो 80% छूट गया है जो हाशिए के लोग हैं, अगर मैं उनकी बात कहता हूँ तो उसको लेकर विवाद होता है।
मेरे ख्याल से 2 साल की उम्र होगी, वालदेन ने हमारे वो सहारा देने के लिए बल्ला ही दिया होगा, कोई और चीज नहीं दी होगी।
हमारी वर्षांत पेशकश में आपसे रूबरू होंगे पंडित रविशंकर, जोहरा सहगल, राजेंद्र यादव और नवाब पटौदी जैसी कुछ और शख्सियतें दिन भर और नमस्कार भारत में।
इसी कड़ी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुजरे जमाने की बेहद मशहूर अदाकारा, डांसर, डांस डायरेक्टर और थिएटर पर्सनैलिटी जोहरा सहगल को, जो कि 60 के दशक में लंदन में बीबीसी के स्टूडियो आई थी और हमारे पूर्व सहयोगी आले हसन ने उनका साक्षात्कार किया था। इस बेशकीमती इंटरव्यू के जरिए पेश है जोहरा सहगल की जिंदगी के सफर पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसे पेश कर रहे हैं अमरीश द्विवेदी।
किसी को किसी से शिकायत नहीं, आँखों से आँखें हैं चार नहीं रे, आँखों से आँखें हैं चार नहीं रे।
1946 में बनी फिल्म नीचा नगर के साथ जोहरा सहगल के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने इस फिल्म में न केवल अभिनय किया था बल्कि नृत्य निर्देशन में सहयोग भी दिया था। अपने करीब 60 वर्ष के फिल्मी करियर में जोहरा सहगल ने धरती के लाल, अफसर, तमन्ना, दिल से, हम दिल दे चुके सनम जैसी तमाम फिल्मों में काम किया था और अभिनय के अपने खास अंदाज और संवाद अदायगी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी।
आपस में ही तुम हा हा ही करती रहोगी, क्या खुसर फुसर कर रही हो?
कुछ नहीं दादी, इटली से वो लड़का आया है ना, उसी को देखकर ये लड़कियां ही हा कर रही थी।
अरे मुझे भी तो बताओ कैसा दिखता है वो।
जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पारंपरिक मुसलमान परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान रखा था।
खानदान हम लोगों का रोहिला, वो जो है ना वो रोहिला किस कदर जालिम जफाजू कीना परवर था।
हाँ,
यानी वो
हाँ,
लोग हैं हम गुलाम अब्दुल कादिर गुलाम जिलानी का खानदान और वैसे नजीबुद्दौला की नस्ल। हम लोग रूह से आके और यहाँ सेटल हो गए थे। ये जो इंडोगेंजेटिक प्लेन है इसमें नजीब तमाम जो ये रोहिलखंड।
हाँ, रोहिलखंड
जी हाँ। और हमारे बाप दादा यही सिपा सालार वगैरह जनरल वगैरह रामपुर में बस गए थे, फिर वही खानदान है।
जोरा अपने सात भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी और बचपन से ही उन्हें खेलना कूदना और बहादुरी के कारनामे करना पसंद था। जब वो छोटी ही थी तो उनकी माँ नातिका बेगम का इंतकाल हो गया। हालांकि वो चाहती थी कि उनकी बेटियों को अच्छी तालीम मिले।
वालदा की इच्छा थी कि बच्चियों को तालीम दी जाए, लिहाजा हमें लाहौर भेजा क्वीन मेरीज कॉलेज में, जो कि उस जमाने में एक अनसुनी सी बात थी।
हाँ हाँ।
और मुझे याद है कि छुटपन में जब हम तो वहाँ पंजाबी लड़कियाँ थी आड़ी मांग वगैरह निकालती थी, तो हम छुट्टियों में जब घर आते थे तो हमारी तरफ रामपुर में बिल्कुल कुंवारी लड़कियां सीधी चुटिया करती मांग नहीं निकालती। तो हमें देख के वो हमारी फूफियाँ वगैरह कहती थी बच्चियां क्रिस्तान बन गई हैं क्योंकि आड़ी मांग हो गई।
लाहौर के क्वीन मैरीज कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जोहरा जर्मनी गई, जहां उन्होंने नृत्य में लयताल और अभिव्यक्ति की खूबियों की विशेष शिक्षा ली।
मैट्रिक करने के बाद मैं फिर जर्मनी चली गई। मेरी विगमन के स्कूल में मैंने 3 साल रह के यूरिदमिक्स का डिप्लोमा किया।
ये क्या चीज़ होती है
भाई? ये यूरिदमिक्स एक लाबान थे, एक डांसर, उनकी इजाद करदा ये टेक्निक है जिसमें के फिल बदी बच्चों को यानी म्यूज़िक बजा के और वो किस तरह से उससे उनका जिस्म हरकत करता है बग़ैर कुछ चीज़ पहले से सेट किए हुए और फिर उसमें जज्बात का इजहार करना, एक्सप्रेशनिस्टिक किस्म की डांसिंग है ये।
जर्मनी में ड्रेसडन प्रवास के दौरान ही जोहरा को भारत के मशहूर नर्तक और नृत्य निर्देशक उदय शंकर का बैले नृत्य देखने का मौका मिला और वो मंत्रमुग्ध होकर रह गईं। वो स्टेज पर जाकर उदय शंकर से मिली और इस घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो उनके नृत्य मंडली में शामिल हो गईं।
1935 से लेकर 1943 तक उदय शंकर के साथ नृत्य के रंगमंच पे नृत्य के मंच पर काम किया, पहले उनके ट्रूप में शामिल होकर
अल्मोड़े में उनके
जी हाँ, बाद में कल्चर सेंटर में नृत्य सिखाया और उनके साथ तो हिंदुस्तान और 2 मरतबा अमरीका और गोया जर्मनी और तमाम ही देशों में सब जगह घूमे, बहुत
जी
कई फेरे किए।
सन 40 में जोहरा अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में डांस टीचर बन गई और वहीं उनकी मुलाकात चित्रकार और नर्तक कामेश्वर सहगल से हुई, जिनके साथ बाद में उन्होंने विवाह रचा लिया। उदय शंकर के कल्चरल सेंटर के बंद होने के बाद सहगल दंपति लाहौर चले गए।
सन 42 में मेरी शादी कामेश्वर सहगल से हुई और सन 43 में हम दोनों ने लाहौर में अपना खुद का स्कूल जोरेश डांस इंस्टीट्यूट खोला और हम अपने शिष्यों को लेकर टूर पे भी गए थे लाहौर से कलकत्ते तक। मगर सन 45 में पाकिस्तान बनने से पेशतर हमने अपना स्कूल बंद कर दिया और बम्बई चले आए। मैं तो आके पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हो गई एक अभिनेत्री और डांस डायरेक्टर के नाते और मेरे शौहर फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर बन गए।
पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ाव को जोहरा सहगल अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानती हैं, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का भरपूर मौका मिला। पृथ्वी थिएटर में खेले गए नाटकों को याद करती हुई जोहरा कहती हैं,
हमारा एक दीवार खेल था जिसमें कि वो दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम गोया बड़ा भाई छोटा भाई उनमें आपस में ना इत्तेफाकी तफरका हो जाता है और घर के दरमियान दीवार आ जाती है। तो उसमें ये जो दोनों बीवियां होती हैं उनमें अभी तक दोस्ती है, वो दीवार होते भी वो दीवार के दोनों तरफ आके और वो शाम को दोनों गोया मिलती हैं और पूजा करती हैं और आंसू बहाती हैं कि बहन हम तुम दोनों अलग हो गए। تو یہ چل رہا تھا اور اس زمانے میں رائٹس بہت زور شور سے تھے.
یہ کب کی بات ہے؟
بمبئی میں بھائی. یہ ہوگی سن سمجھیے کہ
47.
ہاں 47 کی بات ہے. تو ہم لوگ کہیں باہر تھے اور میں تو خیر اس میں وہ انگریز عورت بنتی تھی جنہوں نے ان دونوں کو لڑایا تھا آپس میں, دونوں بھائیوں کو. میں تو اپنی ڈریسنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے میں نے شور سنا. تو بعد میں مجھے یہ کہانی بتائی گئی کہ وہ دونوں بہنیں جو بنی ہوئی ہیں, بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کی بیوی, تو وہ پوجا کرتی ہیں اور وہ پوجا کرتی ہیں تو تھالی ہوتی ہے اور اس میں دیے وغیرہ ہوتے ہیں اور پوجا کس کی کرتی ہیں؟ ہندوستان کا نقشہ, اس کی گویا وہ مورتی سی بنی ہوئی. تو ایک دم سے میری بہن بنتی تھیں پرتھوی راج کی بیوی, گویا بڑے بھائی کی بیوی, اور پشپا ایک بڑی اچھی ایکٹریس تھی وہ چھوٹے بھائی کی. تو عذرا نے دیکھا کہ ایک دم سے آڈینس میں سے ایک آدمی بڑھ کے اور ان کی طرف کو اسٹیج کی طرف کو آیا. تو وہ یہ سمجھیں, عذرا سمجھیں کہ کوئی بلوا ہو گیا, کچھ اس میں ہے, کیونکہ ہم دونوں بہنوں کے خلاف کافی آوازیں اٹھی تھیں کہ ہم پرتھوی جی کو بھی ختم کریں گے, ان دونوں بہنوں کو بھی, کہ یہ مسلم ہو کے اور اس قسم کی یہ چیزیں گویا ہندو مسلم یونٹی پہ یہ پلے تھا وہ دکھا رہی ہیں. تو عذرا سمجھیں کہ یہ آدمی اٹھ کے اور کچھ ان کی طرف کو بڑھایا اور کچھ حملہ کرے گا. تو کہتی ہے کہ میری بالکل جان نکل گئی, مگر اتنے میں آگ اس نے سنا, لوگ چلا رہے ہیں, اور وہ جو چھوٹی بہن بنتی تھی اس کے پشپا, اس کی ساڑی کو, وہ جو نیچے آرتی کی جو تھالی رکھی ہوئی تھی اس کے دیے سے آگ لگ گئی. اور اس کی لڑکی کے ماشاء اللہ بہت لمبے بال, بہت خوبصورت بال تھے اس کے لڑکی پشپا کے, تو وہ آگ جو لگی تو اس کی ساڑی کو لگی اور لپٹیں اٹھ کے, اور اس کے بعد میں تمام چہرہ, اس کے پلکیں ولکیں سب جھلس گئی تھیں. اور تھیئٹر میں ایک کسان جو لڑکا بنا تھا نائیڈو, اس نے بڑھ کے اور اس لڑکی کو جیسے کہ کولیا بھر لی اور دبوچ کے, اور پردہ فوراً آ گیا, اور پھر اس میں پرتھوی جی باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اور پشپا بالکل تھر 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 کانپ رہی.
پرتھوی تھیئٹر میں کام کرتے ہوئے زہرا سہگل نے فلموں میں بھی کام کیا اور نرتیہ نردیشن بھی کیا.
جب میں پرتھوی تھیٹرز میں تھی تو میں نے کوئی 9-10 فلموں میں بھی کام کیا ہے, اور صرف ایکٹنگ نہیں بلکہ ڈانس ڈائریکشن بھی دیا ہے, جس میں سے کہ شاید آپ نے بازی, CID, 9-2-11, نیچا نگر
نام سنے.
ہاں ان کے نام سنے.
نیچا نگر میرا خیال ہے چیتن نے ڈائریکٹ کیا تھا.
جی ان کی پہلی فلم تھی, اور بلکہ کامنی کوشل پہلی مرتبہ اس فلم میں آئی تھی, اور اس فلم کی ٹیکنیک کا اثر ستیجیت رائے پہ بھی ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنی اس میں کہ جس طرح سے شارٹس وغیرہ لیے گئے تھے, اور بلکہ میرے شوہر کا اس میں وہ تھا, آرٹ ڈائریکشن تھا, اس میں ایک بڑی بھینکر تصویر تھی جس میں آنکھیں ہلتی ہیں.
اچھا,
تو وہ گویا اس کی کانشنس دکھائی تھی آدمی کی. تو وہ یہ اس قسم کی ٹیکنیک اس زمانے میں نہیں تھی ہندوستان کے لیے. تو یہ, اور پھر ہم نے بلکہ میرے شوہر نے, میں نے اپنے ہمارے سیگل بیلے جو تھا ڈانس, وہ بھی ہم نے اس کے بھی شوز جاری رکھے.
لیکن تھیٹر ان کے دل میں بستا تھا.
بمبئی میں 14 سال رہی پرتھوی تھیٹرز کے ساتھ, اور ہم نے کوئی 111 شہروں کا دورہ کیا ہوگا. آپ سمجھ لیجئے کہ کشمیر سے دکن تک اور بنگال سے سوراشٹر تک شاید ہی کوئی شہر چھٹا ہو جہاں پرتھوی تھیٹر نہ.
ممبئی پرواز کے دوران زہرا اور ان کے پتی کی ملاقات رنگ منچ کی دنیا کی مشہور ہستیوں سے ہوئی, جن میں ابراہیم القاضی اور خواجہ احمد عباس خاص تھے. انہوں نے القاضی کے ناٹک دن کے اندھیرے اور کے عباس کے لیے اپٹا کے ناٹکوں میں کام کیا. لیکن سال 1959 میں پتی کامیشور سہگل کے ندھن کے بعد زہرا کا ممبئی سے موہ بھنگ ہو گیا اور انہوں نے دلی کا رخ کر لیا. یہاں انہوں نے ناٹیہ اکادمی کی شروعات کی اور اس کی پہلی ڈائریکٹر بنی.
میرے شوہر کا دیہانت 1959 میں ہو گیا, اور میں پھر دہلی چلی آئی, کیونکہ مجھ سے وہ بمبئی کی کا واتاورن برداشت نہیں ہوتا تھا. میں پاپا جی کے پاس گئی, وہ کہنے لگے بہن میں بالکل سمجھتا ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں.
پرتھوی راج جی کی بات
جی انہوں نے کہا, ان کا بالکل آپ, میں نے کہا کہ میں اب نہیں سہ سکتی اس کو. تو پھر میں نے لکھا, جواہر لال جی کو بھی لکھا, اور پھر کملا دیوی نے مجھے لکھا, کملا دیوی چٹوپادھیا اور بیگم سیدی, انہوں نے کہا کہ تم دہلی چلی آؤ اور ہم ایک یہ اکیڈمی کھولنا چاہتے ہیں, ناٹیہ اکیڈمی, اس کو تم کھولو اور تم ہی چلاؤ, اور اس میں گویا پرنسپل اور ڈانسنگ بھی سکھاؤ. یہ ناٹیہ اکیڈمی بھارتیہ ناٹیہ سنگھ کے ماتحت چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں ڈانس اور ڈرامہ کی, اور ایسے تقریباً اکیڈمی ہندوستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ہیں. जब मैं ये अकेडमी खोलने वाली थी, जब इन लोगों ने कहा कि तुम ये आके खोलो, तो मेरी तो समझ लीजिए कि आप जो भी ट्रेनिंग हुई है एक्टिंग की, वो इस तरीके से हुई है कि छोटे बच्चे को अगर आप पानी में फेंक दें, सिंक एंड स्विम जिसको कहते हैं, यानी हमने कोई
डूब जाओ या तैरो,
बिल्कुल, यानी हमने किसी स्कूल जाके नहीं सीखा बल्कि एक्सपीरियंस से और उसमें रह के, तो अब इस चीज़ को सिखाएं कैसे? किताबें तो थी नहीं, कुछ बड़ी बड़ी ज़रूर थी स्टैनिस्लावस्की वगैरह की, मगर पढ़ के तो अगर चीज़ आ जाए सिखाना तो फिर बहुत आसान। तो मैं बहुत घबराई हुई थी और मैं दिल्ली से अलकाज़ी के पास बम्बई गई और मैंने कहा भाई ये किस्सा है। वो कहने लगे तुम्हें बिल्कुल घबराने की बात नहीं, तुम्हें अब उल्टे रास्ते जाना है, जो चीज़ तुम करती आई हो अब उसको तुम फिर से वापस जाना शुरू करो, जैसे एक रास्ता चल के इंसान उल्टे पैर वापस चलो और देखती जाओ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया और उसको लिखती जाओ और उसके नोट्स बनाती जाओ। तो इस तरीके से मैं अलकाज़ी के पास कोई 10 या 20 दिन रही और रोज़ वो मुझे अपने ब्रिटिश ड्रामा लीग के नोट्स उन्होंने मुझे दे रखे थे वो देते थे, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाते थे, मुझे अपने प्लेस जितने उन्होंने वहाँ कर रखे थे बम्बई में वो ले जाते थे और बाकायदा अंग्रेज़ी थिएटर की कैसी हिस्ट्री से लेके और तमाम और कॉस्ट्यूम इस सब पे उन्होंने मुझे एक किस्म की लेक्चर जैसे बराबर वो 10-20 दिन उन्होंने मुझे मुतवातिर दी और कहने घबराने की कोई बात नहीं तो बिल्कुल आराम से जाके शुरू कर।
नाट्य अकादमी में थोड़ा वक्त बिताने के बाद साल 1962 में जोहरा सहगल एक वजीफे पर लंदन चली गईं और वहाँ एक स्कूल में डांस टीचर के रूप में काम करने लगीं। वहाँ उन्होंने डॉक्टर हु जैसे कई ब्रितानी नाटकों में भी काम किया।
यहाँ के मैंने ब्रिटिश ड्रामा लीग का 10 हफ्ते का कोर्स किया
जी।
और भाग्यवश से मुझे वहाँ का स्टार सर्टिफिकेट मिला जो कि जहाँ तक मेरा इल्म है सिर्फ अलकाज़ी को और हबीब तनवीर को मिला हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में। और इस यात्रा के लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साइंटिफिक अफेयर्स हिंदुस्तान से वापसी टिकट मिला था, मगर जब मैंने ब्रिटिश ड्रामा लीग का कोर्स ख़त्म किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये अवसर हाथ से नहीं खो देना चाहिए और लंदन रहकर यहाँ के रंगमंच मुख्तलिफ नाटकों और अभिनेताओं की टेक्निक की छानबीन करनी चाहिए। लिहाजा मैंने अपना टिकट दिल्ली सरकार को वापस किया और नाट्य अकेडमी से छुट्टी मांगी कि भाई मुझे कुछ साल यहाँ आप और रहने दें। और इस फैसले के चंद रोज़ बाद ही भारत और चीन में लड़ाई छिड़ गई तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भी यहीं बुलवा लिया।
अच्छा,
मेरी लड़की किरण का तो पहले ही से इरादा था कि वो यहाँ आकर आर्ट वो करे, इंटीरियर डेकोरेशन। मैंने कहा लड़के को भी ये अवसर मिलना चाहिए कि यहाँ की शिक्षा प्राप्त करे, तो वो दोनों यहाँ।
90 के दशक में जोहरा एक बार फिर भारत लौटी, तब तक वो 80 साल की हो चुकी थी लेकिन खूब सक्रिय थी। इस उम्र में भी उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया और वीर जारा, चीनी कम और सांवरिया जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया।
मैं सदके जावा कुर्बान जावा बल्ले 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 ओ कसम से जादू चल गया आज भी रज में शादी रे।
अपने लंबे जीवन काल में जोहरा सहगल ने जिंदगी के हर रंग देखे और आखिरी दम तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। साल 2014 में 9 जुलाई को 102 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। अभिनय और नृत्य कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। अमरेश द्विवेदी, बीबीसी, दिल्ली।
बीबीसी की वर्षांत प्रस्तुति पर जोहरा सहगल पर आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे और सुबह नमस्कार भारत में आप इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन सकेंगे। इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार रहे सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान ने सोची से उड़ान भरी थी और यह सीरिया जा रहा था। फिलीपींस एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में है। इस तूफान को नीना नाम दिया गया है। तूफान के असर से 235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पोप फ्रांसिस ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने पर जोर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने देश के विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों के राजदूतों को बुलाएं और सख्त शब्दों में उनके सामने अपना पक्ष रखें। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे पहली सभा नमस्कार भारत लेकर हम फिर उपस्थित होंगे और तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।